मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पे चल रहा है WPC का धरना प्रदर्शन। मेरे साथ कुछ साथी हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अनिल कुमार है।
अनिल कुमार जी, कहां से आए हैं आप?
मैं कालकाजी विधानसभा से आया हूं, गोविंदपुरी वार्ड।
क्या आपकी मांगे हैं? आप यहां पे जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं।
मैं यहां पर अपनी मांगों को लेकर के आया हूं। हमारी ये मांगे हैं, 2 नवंबर 2022 को मोदी जी ने चाबी दी थी 575 लोगों को, और वहां से विज्ञान भवन से चीख चीख के कहा था कि 3024 लोगों को कालकाजी विधानसभा के भूमिहीन कैंप के 3024 लोगों को फ्लैट दिए जा रहे हैं, जो बहुमंजिला इमारतें बनकर तैयार हुई है सीलाल चौक पे, ओखला के बगल में है बिल्कुल। तो वहां पर इन्होंने 3024 का अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन दिया सिर्फ 1862 परिवारों को, और 1862 परिवारों को देने के बाद में इन्होंने 1200 लोगों का सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया है। कुछ लोगों का राशन कार्ड सेपरेट नहीं है, कुछ लोगों ने 2019 में वोट नहीं डाला, कुछ माइनर है, माइनर वालों का केस ऐसा है जो माइनर वाले कहते हैं कि DDA 2014 की पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है, और 2019 में हमारा सर्वे हुआ था, तो 2014 की पॉलिसी के हिसाब से जब 2019 में सर्वे हुआ तो कुछ बंदे 18-19 साल के थे, तो उस हिसाब से वो लोग 2014 में 14-15 साल के रहे होंगे, तो उस टाइम पे उन्हें माइनर करार दे दिया गया कि ये बंदा ना माइनर है। अब ये हम कैसे मान लें, जब आप 2014 की पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2019 में सर्वे करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि 2014 में बंदा माइनर था, तो आप उसी हिसाब से चलिए ना। 2014 की पॉलिसी जब आप ले रहे हैं तो माइनर के माँ बाप का सर्वे कीजिए। आप लोग सर्वे करते हैं किसी और का, दिखाते हैं किसी और को। DDA की बहुत बड़ी कमियां हैं, DDA वाले पब्लिक को पूरी तरह से बेवकूफ समझते हैं। वो ये चाहते हैं कि कैसे भी इनको लात मार के करोड़ों की जमीन हड़प लें और ये लोग अपना कैसे भी जिए खाएं, कुछ भी करें। ऐसा नहीं चलता ना देश में, और वो अपनी पॉलिसी का हम पे थोपना चाहते हैं। पॉलिसी में उनकी साफ साफ लिखा 2014 की पॉलिसी है कि जिस पे सेपरेट राशन कार्ड रहेगा हम उसको घर मकान देंगे। तो 2014 के बाद से तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कोटा ही नहीं दिया है दिल्ली को। दिल्ली में ओनली 472 लाख राशन कार्ड है, और केंद्र सरकार कहती है कि हमने 2 करोड़ राशन कार्ड बना के दे दिया। जी 2 करोड़ तो दिल्ली में आबादी भी नहीं है, 1.82 करोड़ तो टोटल वोटर है, आपने कहाँ से 2 करोड़ राशन कार्ड दे दिए? अभी नहीं, बातों को लेकर के ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, और हमारा दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है। 4 बार हमें दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे मिल चुका है, मतलब कोर्ट हमें मानता है कि आप लोग लीगल हो, लेकिन DDA नहीं मानता कि हम लोग लीगल है। DDA कहता है कि सेपरेट राशन कार्ड होगा, 2019 में वोट डाला होगा, तब आप लोग लीगल हो। ये क्या बात हुई? हम लोग 2006-07 से वोट डालते आए हैं लगातार। वोट क्या होता है? वोट होता है एक तरह की हाजिरी होती है, आदमी किस स्टेट में रह रहा है, कौन सी विधानसभा में वोट डाल रहा है, किस विधानसभा में उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, ये एक तरह से पहचान पत्र है। इससे लोगों को आइडेंटिफाई होता है कि लोग किस क्षेत्र से हैं और कहाँ पे वोट कर रहे हैं। अब वोट भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, राशन भी उठाते हैं, फिर भी ये लोग इनलीगल मानते हैं। हमारे माँ बाप को दे दिया गया है, हमारी फैमिली में 17 मेंबर है, और ऐसे हमारे झुग्गी के सैकड़ों केस है कि एक माँ बाप को दे दिया, 3-3, 4-4 भाई शादीशुदा है, तो उन लोगों को ये लोग कहते हैं इनलीगल है। अजीब संयुक्त परिवार होता है, एक साथ ही रहता है हम गरीबों का, हम लोग अलग अलग नहीं रहते आपकी तरह, अमीरों की तरह कि भाई बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप को अलग कर दिया, आप अपनी बीवी लेके अलग रहे, ऐसे नहीं रहते हम लोग। हम लोग संयुक्त परिवार रहते हैं, 15-16-10-12 जो भी मेंबर होता है हम इकट्ठे रहते हैं छोटी छोटी माचिस की डिब्बियों में, लेकिन ये वो माचिस की डिब्बियां भी हमारी तोड़ी जा रही है, हमें पूरी तरह से बेघर किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। अब हम पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखा तब हम लोग जंतर मंतर पे आए धरना देने के लिए, और स्टे तो हमने कोर्ट से 4 बार ले चुका, 4 बार हमें तारीख मिल चुकी है। एक बार हमें 8 अगस्त की तारीख मिली, 8 अगस्त को फैसला हुआ, फिर उस दिन कहा गया कि 20 सितंबर तक आपका केस सुना जाएगा। 20 सितंबर के बाद फिर हमें लंबी डेट मिली 14 दिसंबर की, 14 दिसंबर के बाद हमारी 9 जनवरी की 31 जनवरी की डेट दी गई, उसके बाद हमें फिर अभी 19 फरवरी की डेट दी गई है, और कैटेगरी वाइज करने को कहा गया है। 7 कैटेगरियों में हमारी पूरी झुग्गी के मैटर को बांटा गया है, 7 तरह की कैटेगरी लगाई गई है, उस अलग अलग कैटेगरी पे एक एक मैटर पे एक एक बार सुनवाई होगी।
कौन सी संस्था आपको यहाँ लेकर आई?
हमें यहाँ पे लेकर के आई है निर्मल जी की संस्था, चलती है वर्किंग पीपल्स चार्टर एवं मजदूर आवास संघर्ष समिति के आह्वान पे हम लोग यहाँ पर आए हैं, इनका एक NGO चलता है, निर्मल जी है हमारे साथ, जंगपुरा में इनका NGO चलता है। इन्होंने शुरू से हमें बहुत हेल्प करी है और हमें सारे प्रोग्राम,
क्या यहाँ धरना देने से उम्मीद है कि आपकी मांगे पूरी होंगी?
हमारी सिर्फ इतनी, मतलब यहाँ पे धरना देने का यही एक मंशा है, हम लोग चाहते हैं हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक पहुँचे, क्योंकि बड़ा मीडिया हमें कोई दिखाता नहीं है, वो लोग डरते हैं केंद्र सरकार से, मीडिया पूरी तरह से गोदी मीडिया हो चुका है, वो लोग केंद्र सरकार से इतना डरते हैं कि पूछो मत। चैनल बंद कर दिए जाएंगे, बंदों को जेल में डाल दिया जाएगा। इतने बड़े बड़े चेहरे तो जेल में पड़े रहते हैं, वो लोग कुछ कर नहीं पाते। मनीष सिसोदिया को देखिए आप, कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जब इतने बड़े शिक्षा मंत्री का ये हाल है तो हम तो छोटे मोटे गरीब मजदूर है, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ मसल के फेंक दिया गया। इसीलिए हम लोग डरते हैं डायरेक्ट सामने आने से। तो हम लोग किसी संगठन के थ्रू ही यहाँ पर रह सकते हैं या धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। बाकी यदि हम खुद यदि कुछ करना चाहेंगे तो पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। हमने एक बार अपने इधर भी करना चाहा था, लाठी चार्ज कर दिया गया था। मैं रिक्शे में अनाउंसमेंट कर रहा था, मुझे उठा के गोविंदपुरी थाने में पुलिस वाले ले गए थे, 2 घंटे तक बिठाए रखा था रिक्शे के साथ। 2 घंटे बाद फिर ऊपर से
क्या काम करते हैं?
मैं अपना सिलाई का काम करता हूँ, छोटा मोटा काम।
कितना रोज कमाते हैं?
मैं 400-500 रुपए की दिहाड़ी करता हूँ।
इस टाइम सर्दी से पहले काम अच्छा था या सर्दी के बाद अच्छा है, या सर्दियों में क्या हालात है?
सर देखिए, काम तो हमारा पहले अच्छा था कांग्रेस की सरकार में, वो किस लिए वो उसका मैं वजह बताता हूँ। इस टाइम जो एक्सपोर्ट का हमारा हाल है ना, एक्सपोर्ट का काम हमारा आता है विदेशों से, जो आउट ऑफ कंट्री से काम आता है वो काम हम लोग कर पाते हैं। लेकिन आउट ऑफ कंट्री में क्या हो चुका है, इस टाइम विदेशों में इतना हिंदू मुसलमान का डर बैठा दिया है ना मोदी सरकार ने, कि विदेशी कोई भी जो वायर होते हैं हमें ऑर्डर।
तो आप एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके नहीं तो मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, अब क्या दिक्कत है?
अजी राम मंदिर, मोदी जी कहते हैं राम मंदिर, राम मंदिर क्या राम को मोदी जी लेके आए हैं क्या? उससे पहले राम नहीं थे क्या हमारे देश में?
नहीं, भाजपा वाले तो यही कहते हैं,
उनके
काम लेके आए कि उनका एक गाना भी है कि हम जो राम को लाएगा हम उनको लाएंगे।
अजी हम नहीं मानते इन चीजों को कि जो राम को लाए, आप कहाँ से लाओगे राम को? आप तो खुद 1980 में बन के आए हो, बीजेपी की पार्टी ही बनके 1980 में तैयार हुई है, तो वो कहाँ से राम को लाएगी? राम को तो खुद
तो
राम
तो अब तो आपको काम अच्छा मिलेगा क्योंकि राम मंदिर बन चुका है।
काम अच्छा मिलेगा, आप सही कह रहे हो, काम अच्छा मिलेगा। वहाँ पे एक ही काम मिलेगा, कटोरा लेके जाओ और बैठ जाओ मोदी की सरकार में। ये काम आपने बहुत अच्छा कहा कि बिना मेहनत किए कटोरा लेके बैठे रहो, अपने आप रोजगार आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, बच्चों को उसी कटोरे में से पैसे निकाल
भिखारी बना दिया,
भिखारी बना ही दिया।
अच्छा, राम मंदिर की जगह आपकी क्या विचारधारा है कि जैसे राम मंदिर से कारोबार मिलता या अस्पताल बनता या कुछ और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनता, उससे विकास होता देश का?
सर ऐसा है, राम मंदिर गलत नहीं है, राम मंदिर बनना अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर बनाना काम होता है धार्मिक संगठनों का, सरकार का काम नहीं है राम मंदिर बनाने का। सरकार हमने चुनी है अपनी सुविधाओं के लिए, अपने मतलब देखभाल के लिए, सड़कें बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, बिजली लाइट सही करने के लिए, इस चीज के लिए हम सरकार चुनते हैं। बाकी धार्मिक मसला जो है वो पब्लिक का खुद का होना चाहिए, ना कि सरकार का। सरकार करे इसमें इंक्लूड हो, लेकिन इतना भी ना हो कि पूरी तरह से
सरकार हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है,
पूरी तरह
बेरोजगारी पर कोई काम नहीं हो रहा
पूरी तरह से। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, मैं 12-13 साल से कारीगरी करता हूँ। मैं 10 साल पहले जो शर्टें बनाता था, 10 साल पहले भी हमें 45-50 रुपए शर्टों का रेट मिलता था, आज उन शर्टों का रेट गिर के 30-32 रुपए हो चुका है। लेकिन वही चीज दूसरा आंकड़ा में,
इसका क्या कारण?
इसका कारण सीधा सीधा है कि विदेश से काम नहीं आ रहा है, रेडीमेड काम
बनाने वाले ज्यादा हो गए,
बनाने वाले कारीगर ज्यादा हो चुके हैं, और विदेश से काम ना होने की वजह से लोग अपने इंडिया का ही काम कर रहे हैं, रेडीमेड काम कर रहे हैं, और रेडीमेड कामों में मेजरमेंट का लफड़ा नहीं होता, उसमें सीधे सीधे अपना कैसे भी करके सिलाई टेढ़ी मेढ़ी करके मार दो, पीस खड़ा कर दो फूर्ती पे, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आज से 10 साल पहले मैं 700-800 रुपए का काम करता था, लेकिन आज की डेट में मैं 400-500 का काम करता हूँ।
भाई साहब आप कहाँ से हैं? नाम तो बताओ। क्या
रवि नाम है?
कहाँ से आए हैं?
वुमेन कैंप।
तो आपकी क्या किस लिए आए हैं यहाँ?
ये हमारे को झुग्गी टूट रही है सारी, इसलिए हम आए हैं।
आपका भी झुग्गी का ही मामला है?
नहीं जो
क्या आप क्या काम करते हैं?
मैं रेडी बट्टी का काम करता हूँ।
कुछ काम वाम है या खाली है?
खाली घूम रहा है घर।
कैसे चलते हैं खर्चे घर के?
अब चल रहे जैसे मर्जी।
आप कहाँ से आई हैं?
मैं कैंप से
आई है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम प्रियंका है।
किस लिए आई हैं आप यहाँ?
यहाँ हमें मकान नहीं मिला गया है, और जिस जगह हम रह रहे हैं अभी, और टूटी फूटी जगह है, वहाँ में बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, ना शिक्षा में अच्छी मिल रही है, पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए हमें रास्ता बहुत मुश्किल से चुनना पड़ता है, किस जगह से जाए किस जगह से नहीं, और घर हमें मिला नहीं, इस वजह से और ज्यादा परेशानी।
उम्मीद है कि निर्मल जी आपको मकान दिलाएंगे?
पूरी उम्मीद है कि हाँ, पूरी उम्मीद है।
कितनी बार आप लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में आ चुके हैं?
यहाँ पर तो कई बार हो चुका, मतलब 10 बार तो हो ही चुका है ऐसी कुछ कि अपना धरना
मतलब ये जो पीपल्स चार्ट मजदूरों का एक संगठन है इससे आपको पूरी इससे आप जुड़े हुए हैं।
यस
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ कुछ साथी थे मजदूर थे श्रोताओं, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा 92 नंबर है 9211153555 पर मिस कॉल करें, लैंडलाइन नंबर से बैक कॉल आएगी, नंबर 3 दबा के अपनी बात रिकॉर्ड करें, गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल वाली ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।